लेकिन जब प्रकाश वाक्य में आते हैं तो प्रकाश वाक्य पुस्तक सब कुछ का समापन करती है, पूर्ण करती है प्रकाश वाक्य पुस्तक। और समापन के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रकाश वाक्य 20 अध्याय तक मनुष्य की संसार की स्थिति को देखते हैं, जो उत्पत्ति उसके 30 अध्याय से पाप में गिरने के बाद हुई। लेकिन जब आप प्रकाश वाक्य 21 और 22 अध्याय को आप पढ़ेंगे तब वही स्थिति को, मैं बार बार बोल चुका हूँ, वही स्थिति को हम देखते हैं जो उत्पत्ति में पहले और दूसरे अध्याय में पाते हैं, अर्थात वहाँ पर पाप नहीं है, कोई भी पाप पहले और दूसरे अध्याय उत्पत्ति में नहीं है। ठीक प्रकाश वाक्य में भी आखिरी दो अध्याय में कोई पाप नहीं है, पाप का निवारण परमेश्वर ने पूरी तरह कर दिया और अब परमेश्वर का न्याय का समय आ गया है। तो पहली बात यह है कि उत्पत्ति आरंभ है, प्रकाश वाक्य समापन है। इस चीज को हमें साधारण रीति से इसको समझना है। 22 अध्याय है प्रकाशवाक्य पुस्तक में। प्रकाशवाक्य की पुस्तक का अर्थ है यूनानी भाषा में वो किसी पर्दे को हटाना, किसी पर्दे को हटाना। कोई चीज पर पर्दा पड़ा हुआ है, ढकी हुई है और आप उसको हटा रहे हैं तो अब जो चीज ढकी है वो खुले रूप में दिखाई दे रही है। और प्रकाशवाक्य की पुस्तक में यही है कि बहुत सारी चीज जो ढकी हुई थी अब धीरे धीरे वो खुल रही है और परमेश्वर का आत्मा किस रीति से उनको खोल रहा है। जब हम इसके लेखक के बारे में पाते हैं, हम देखते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार का जो लेखक है, और यूहन्ना प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के सबसे अधिक प्रिय प्रेरितों में से एक है। यूहन्ना ने जब सुसमाचार लिखा अपना नाम कहीं नहीं लिखा, यूहन्ना ने जब पत्रियों को लिखा तो अपना नाम कहीं नहीं लिखा। पहला यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा और सुसमाचार का लिखने का कर्ता यह था, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि तुम यीशु को जानो और यीशु के द्वारा तुम जीवन पाओ, उद्धार को प्राप्त करो, ये मुख्य उद्देश्य है। और उसने अपना परिचय इस तरह से दिया है जिससे वो शिष्य यीशु जिससे प्रेम करता था, वो शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता था, वो शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता था। जहां कहीं भी ये शब्द आया है सुसमाचार को पढ़ते हुए तो आप ये देखेंगे, समझ जाइए कि यूहन्ना अपने स्वयं के बारे में कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मैं तो बहुत छोटा हूँ और इसलिए वो अपना नाम लेते हुए अपने आप को इतना ज़्यादा समझता था, इसलिए उसने अपना परिचय इस तरह से दिया। तो सुसमाचार का लिखने का कारण ये है कि लोग यीशु को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु के द्वारा जीवन को प्राप्त करें। और इसीलिए सुसमाचार यूहन्ना में सबसे अधिक जीवन की बातें लिखी गई हैं, सबसे अधिक जीवन शब्द सबसे अधिक उसमें आया है, यूहन्ना में आया है। जब हम इन पत्रियों में आते हैं, जो पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री आती है जो यूहन्ना ने लिखी है, अब उसका उद्देश्य दूसरा उद्देश्य है। उसका उद्देश्य यह है कि तुमने जीवन पा लिया, तुमने यीशु मसीह को पहचान लिया, तुमने यीशु मसीह को जान लिया, तुमने यीशु मसीह के द्वारा जीवन पा लिया। अब जब तुमने यीशु के को जान लिया, यीशु के द्वारा तो पहचान लिया तुमने, उसके द्वारा तुम्हें उद्धार मिल गया, जीवन मिल गया, अब तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, अब तुम्हें कैसे संसार में जीना है। तो तीनों पत्री इस बात को सिखाती हैं कि अब हमारा इस संसार में किस प्रकार से एक मसीह होने के नाते या प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें किस प्रकार से इस संसार में जीना है। और इसीलिए वो यूहन्ना के जब पत्रियों को लिखता है तो जैसे पहली पत्री में प्रभु यीशु मसीह के गुण के बारे में लिखता है कि परमेश्वर क्या है, वही गुण प्रभु यीशु मसीह में, और उसके बाद प्रतिदिन की वॉक के बारे में, चाल के बारे में लिखता है। लेकिन जब प्रकाश वाक्य में आते हैं तो प्रकाश वाक्य में ठीक है, तुमने यीशु को प्राप्त कर लिया, तुम इस पृथ्वी पर प्रभु को जानने के बाद इस रीति से तुमने जीवन व्यतीत करा, इस रीति चले हो, अब तुम्हारे लिए भविष्य में क्या रखा है। भविष्य अर्थात जिन्होंने यीशु मसीह को पाया है और यीशु मसीह के साथ जीवन को व्यतीत किया है उसके अनुसार चलें, अब उनके लिए भविष्य की एक आशा है और वो आनंद काल का जीवन वो क्या है वो प्रकाश वाक्य में हम देखते हैं। हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ समझने की कोशिश करेंगे और आगे। तो तीन बातों को याद रखें, तीनों चीजों को अलग अलग रीति से समझना है। बाइबल को समझने के लिए हम पुस्तकों को जब पढ़ते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि में आना जरूरी है, लेखकों को समझना जरूरी है, और तब हम उस चीज को धीरे धीरे आगे समझते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि किस प्रकार से हमने प्रेरितों का उसका पहला अध्याय 1-11 तक पढ़ा, और 1-11 तक मेहरबानी से पहले मेरे साथ निकाल लीजिए, इसको हम प्रकाश वाक्य के साथ जोड़ेंगे। किस रीति से ये आपको और मेरी मदद करेगा कि हम इसको प्रकाश वाक्य में समझ सकते हैं। प्रेरितों का उसका पहला अध्याय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है 8वें पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मैं यहाँ पर एक स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कई लोगों के सामने एक प्रश्न है और बहुत सारे बातें विवाद, हम पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं है। पहली बात, सियोन कलीसिया का सिद्धांत जो है पवित्र आत्मा का विरोध करना नहीं, पवित्र आत्मा के बिना हमारी सेवा बेकार है, पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन बेकार है, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और पवित्र आत्मा इस संसार में हमें पवित्रता का जीवन ले जाना सिखाता है। लेकिन हाँ, इन पदों को हमें समझना है कि जब हम अन्य भाषा की बात करते हैं तो पवित्र आत्मा का काम केवल अन्य भाषा देना नहीं है। अन्य भाषा उन कई सारे वरदानों में से एक वरदान है जो किसी भाई को मिल सकता है, किसी बहन को मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता। मुझे प्रभु ने नहीं दिया, मैंने बहुत प्रार्थना करी, अब इसका मतलब नहीं कि प्रभु ने मेरे को पवित्र आत्मा नहीं दिया। पवित्र आत्मा तो प्रभु ने उस दिन मुझे दे दिया था जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया था। जिस दिन आपने उसको स्वीकार किया पापों से पश्चाताप करके, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आया, कौन रहता आपके जीवन में? आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहता है, वही आपके जीवन को संचालित करता है, वही आपके जीवन को चलाता है। सो इस पर तो कह रहा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे। कौन सामर्थ पाओगे? सामर्थ चंगाई की सामर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, या अन्य भाषा की सामर्थ की बात नहीं कर रहा है, यह बड़े बड़े कार्य करने की सामर्थ की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। एक मसीह जीवन एक गवाह का जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में काम करता है तब वो सबसे पहले मुझे और आपको अपना गवाह बनाता है। अभी एक संडे पहले या दो संडे पहले एक भाई यहाँ पर आए थे और वो एचएल में थे, एचएल में काम करते, मैं भी उस समय एचएल में था, उनका डिपार्टमेंट दूसरा था, मेरा डिपार्टमेंट हम इधर थे। उस बात जब बातचीत हुई तब हमें पता चला, उस पीरियड में मैं भी वहाँ पर था। जब प्रभु यीशु मसीह को एचएल में रहते हुए मैंने प्रभु को स्वीकार किया था, प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, बदलाव किया। बहुत सारी लंबी कहानी है, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय एचएल में रहते हुए मेरे जीवन में कार्य किया जो कि पिछली बातों को छोड़ करके मैं प्रभु के अनुग्रह में मैं एक नए जीवन को चाल चलूँ, जीवन व्यतीत करूँ और उसका गवाह बन करके उस एचएल में कुछ समय में रहूँ। उसके बाद एचएल छोड़ करके मैं प्रभु की सेवा में आ गया। सो आप कहीं भी हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अपना गवाह बनाता है कि आप उसके गवाह बन जाएं। हाँ, ये भाई मसीह है, इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया, इसके पापों की क्षमा हो गई, अब इसका जीवन प्रभु में एक नया जीवन है, ये परमेश्वर की संतान है, इसने उद्धार पाया है, इसने नया जीवन पाया है। और आप अपने जीवन की साक्षी को इस बात देते हैं, वो कहते हैं तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। कहाँ गवाह होगे? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, यहां तक पृथ्वी के छोर छोर तक। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में सबसे पहले कलीसिया की स्थापना हुई और यरूशलेम से पहले के बाद तब सुसमाचार फैलता गया। यरूशलेम के बाद वो सुसमाचार यहूदिया में आया, सामरिया में आया और उसके बाद दुनिया में फैल गया। जब हम प्रेरितों का पिछले दिनों में हम अध्ययन कर चुके हैं और इस पर विस्तार से हम सीख चुके हैं, लेकिन तब आगे चल के क्या कह रहा है? इतना कहने के पश्चात वो उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया कि कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और लोग भीड़ लगाए हुए हैं, चारों घेरे हुए हैं, उसके शिष्य भी हैं और लोग भी हैं, और वो ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। देखते 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 बादल में और प्रभु देखते देखते ऊपर उठा लिए गए, ओझल कर दिया। जबकि वो जा रहा था तो उसे जाते हुए आकाश की ओर एक तक देख रहे थे और देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। यही यीशु जिसको तुमने स्वर्ग पर जाते हुए इस समय देख लिया है तुम्हारे सामने वो सर्प उठा लिया गया, एक दिन वो फिर से वापस आएगा। और प्रकाश वाक्य की पुस्तक इसी चीज का पूरा विस्तार के साथ वर्णन करती है, इसी चीज का, उसके आगे का जो कंटिन्यूएशन है वो प्रकाश वाक्य की पुस्तक में है। क्योंकि इसके बाद अब कलीसिया स्थापना हुई, प्रभु का सुसमाचार फैलने लगा, प्रभु का कार्य हो रहा है, परमेश्वर ने कलीसिया को बना दिया। जब हम आगे जाएंगे देखेंगे प्रकाश वाक्य में कलीसियाओं के बारे में तब देखेंगे। लेकिन तब उसके बाद अब प्रभु यीशु मसीह का आना कैसे होगा, तो वो उस प्रतिज्ञा का पूरा होना किस प्रकार से पूरा होगा, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या क्या चीज होंगी, वो सारी चीज प्रकाश वाक्य में खुलासे में की गई है। इससे पहले जब दानियल की पुस्तक में हम आते हैं तो दानियल की पुस्तक में 12 अध्याय हैं। मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ, दानियल की पुस्तक में 12 अध्याय हैं और पहले 6 अध्याय इतिहास के बारे में, लेकिन अंतिम 6 अध्याय में 4 राज्यों के बारे में है और चौथा राज है वो रोमी राज है। और रोमी शासन काल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था रोमी। लेकिन उस समय दानियल क्या कहता है, दानियल क्योंकि उस समय पढ़ते हुए जब हम दानियल को देखते हैं तो दानियल की पुस्तक में हम पाते हैं कि 12 अध्याय दानियल उसका 12 अध्याय और उसमें हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर सारी बातें सील कर दी गई, वहां पर सारी बातों को सील कर दिया गया। दानियल 12 अध्याय 9 पद कि उसने कहा है दानियल तू चला जा क्योंकि ये बातें गुप्त और अंतिम समय तक के लिए मोहर बंद है। मोहर बंद का मतलब क्या है, कोई चीज को बंद करके उस पर सील लगा दी गई। अब सील लगाने का मतलब यह है जिसकी सील है उसके पास अधिकार है, वही खोल सकता है, कोई दूसरा नहीं खोल सकता। और इसी को जब हम प्रकाश वाक्य में आते हैं तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसी चीज को खोल दिया है। जो दानियल की पुस्तक में मोहर बंद दिखाई दे रही है उन्हीं बातों को हम देखते हैं कि किस रीति से वो प्रकाश वाक्य में वही चीजें खोली जाती हैं। उसको भी अभी हम आगे चल करके देखेंगे किस रीति से वो सारी को खोल दी गई। लेकिन जब हम प्रकाश वाक्य में जाते हैं इस बात को एक बार मेहरबान से अब आइए प्रकाश वाक्य में, हम एक दो पदों को पढ़ेंगे। मेरा मुख्य कारण ये कि जो आज मैं पृष्ठभूमि आपके सामने ले रहा हूँ इसको हम समझ जाएं और समझने के साथ साथ तब आप आगे बढ़ सकें, ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना। प्रकाश पहला अध्याय उसका 19 पद, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इनके पश्चात होने वाली हैं उन्हें लिख ले। जो तूने देखे हैं, अब यही संदेश योना के पास पहुंच रहा है। योना प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य है, 12 शिष्य में से एक शिष्य है, वो प्रेरित है और उसने इसको लिखा है, परमेश्वर ने लिखा है। अभी हम उस पर भी जाएंगे कैसे क्या है देखा, क्या देखा उसने, था योना ने क्या देखा था, योना ने प्रभु यीशु मसीह की सेवा को देखा था कि उसने ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए और न केवल उसने पृथ्वी पर आए, उसने अपने शिक्षाओं के द्वारा, अपने सेवाओं के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने आश्रम के द्वारा, अपने परमेश्वरत्व को, परमेश्वर के अधिकार को प्रदर्शित किया है। और न केवल उसने इतना देखा लेकिन उसने एक और बात देखी कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर मारा गया। केवल योना यही एक शिष्य था, सारे शिष्य क्रूस के समय पे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे छोड़ के तितर बितर हो गए थे, लेकिन ये योना ही था जिसको बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरियम को, कहा उसने मरियम को कभी माँ करके संबोधित नहीं, कहा हे नारी देख तेरा बेटा ये है, यौना की ओर इशारा करते हुए, और यौना से कहा देख तेरी माँ ये है। और तब उसके बाद उसने इस मरियम की जिम्मेदारी यौना को दी और यौना उसको लेकर अपने साथ चला गया। सो यौना ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा, यौना ने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को देखा, यौना ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद दफनाए जाने को देखा और जी उठने के को भी देखा। तो जो बात तूने देखी है, क्या देखा है कि परमेश्वर की योजना में उसका इकलौता पुत्र मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया है ताकि ना केवल वो अच्छे अच्छे काम करें, ना केवल वो शिक्षा दें, ना केवल वो भूखों को खिलाए, ना केवल वो आश्चर्यकर्म करें, ना केवल वो चंगाई करें, लेकिन सबसे बढ़कर समस्त मानव जाति के पापों को लेकर के वो क्रूस पर बलिदान हो जाए। जो पाप का दंड मुझे और आपको भुगतता था वो उसने स्वयं अपने ऊपर ले लिया और अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर बलिदान हो गया। यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान ना होते तो इस संसार में और कोई दूसरा नहीं था जो मुझे और आपको पापों से छुड़ा सकता था, कोई नहीं होता। और वो कार्य जो कोई नहीं कर सकता था वो प्रभु यीशु मसीह ने किया, और इसको यूहन्ना ने देखा। वो उद्धार के कार्य को जो परमेश्वर पिता की योजना में होकर के जो यीशु मसीह द्वारा पूरा किया उसको देखा है। तो कह रहा है जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, अब ये वर्तमान की बात है, जो बातें हो रही हैं वर्तमान में, जो हम चलते चले आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पे उठाए जाने के बाद। उसके बाद यूहन्ना कुछ साल और जीवित रहा, अभी हम उसमें भी जाएंगे उसको समझने के लिए। जब कुछ समय और जीवित रहा उसके बाद आज भी जो चीज हो रहा है, लेकिन कुछ बात ऐसी जो आने दिन में होंगी, लिखा है जो फ्यूचर की ओर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो प्रकाशित वाक्य पुस्तक ये तीनों को लेकर के आगे बढ़ती है, और इसलिए पहला अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। पहला अध्याय एक ब्रिज के समान है, ध्यान दीजिए। तो प्रकाशित वाक्य क्या बात कर रहा है, जो बातें हो गई हैं अर्थात मेरे और पाप के छुटकारे के लिए जो निवारण हो चुका है, जो आज वर्तमान में घट रही हैं, जिसके लिए भविष्यवाणी पहले हो चुके हैं, यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी हुई। जब यशाया तक हम भविष्यवाणी को पढ़ते हैं तो यशाया यर्मा की भविष्यवाणी जरूर कुछ चीज़ों को इस ओर प्रकट करती हैं, लेकिन अधिकतर करीब 80% भविष्यवाणी वो उस समय इसराइलियों के लिए थी, और 20% आगे चलकर सुसमाचार पीरियड के लिए, काल के लिए, जो सुसमाचार का कार्य अब चलाई, जो पीरियड है ये सुसमाचार काल कहलाता है, कलीसिया काल, और इसलिए हमें इसको समझना है। तो कह रहा है कि जो रही है इनके पश्चातों ने उन्हें लिख ले, उसको लिखने के लिए। सो अब थोड़ा सा यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना ने जब प्रकाशितवाक्य की पुस्तक को लिखा उसकी आयु लगभग 90 से 95 के साल के बीच। अब कुछ हम हिस्टोरिकल परिस्थिति को समझना चाहेंगे क्या हो रहा था इस समय में। करीब 64 से 65 AD यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद नीरो राजा, नीरो शासक था और रोम पे राज कर रहा था, और वहाँ पर उससे सबसे ज़्यादा मसीहों को सताया गया। लेकिन उसी समय में उसने कुछ ऐसा करा, उसने रोम में आग लगवा दी, और रोम में आग लगाने के कारण उसका एक मन की ये इच्छा थी कि जो पुराने भवन के निर्माण हैं ये आग लग करके सब बर्बाद हो जाएंगे, तो मैं नया रोम को स्थापित करूंगा। लेकिन जब ये बात खुलासे में आ गई कि आग लग गई तो उसने अपने आप को बचाने के लिए मसीहों का नाम लगा दिया, क्रिश्चियंस का नाम लगा दिया, और जो उस समय विश्वास में आ गए यीशु मसीह के अनुयायी थे, और जब उनका नाम लगा दिया गया तो उनको लोगों ने विरोध किया और रोमियो ने करीब 40,000 मसीहों को उस समय मार डाला। ऐसी परिस्थिति थी, वही पीरियड था जब पतरस और पौलुस की भी, वो भी सुसमाचार के कारण वो भी बलिदान हो गए। लेकिन अभी यूहन्ना जीवित है। अब यूहन्ना उसके बाद वो बंदीगृह में डाला जाता है, पतमस के बारे में हम बाद में देखेंगे, जब उस शत पर आएंगे तब हम देखेंगे, लेकिन उसको भी बंदी बना लिया जाता है। जरूर वो पतमस में भेजा गया, उसको बाद में मैं आपके सामने डालूंगा। तो ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि है, और परमेश्वर अब यूहन्ना को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमने दानिय्येल की भविष्यवाणी को देखा, दानिय्येल किस प्रकार से उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, प्रकाशित वाक्य किस प्रकार से ये सारी बातों को कर रहा है। लेकिन अब आगे चलने के बाद जब हम इस पुस्तक को देखते हैं, कई तरह से विभाजन है। पहले हम चार विभाजन को देखने के बाद फिर और खंड में हम जाएंगे। पहला विभाजन है जो प्रस्तावना, पहले अध्याय के पहले पद से लेकर 8 पद तक, प्रस्तावना कह दीजिए अब, उस इंट्रोडक्शन कह दीजिए, परिचय कह दीजिए, सारी चीज जो है कि ये है मसीह द्वारा उस भेद के रहस्य को खोलना, मसीह द्वारा उस भेद के रहस्य को खोलना। यूहन्ना कुछ नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा। तो कौन है यूहन्ना को इस्तेमाल किया जा रहा है, यूहन्ना को यूज किया जा रहा है। हम लोग बोलते हैं यूहन्ना का प्रकाश था, यूहन्ना का प्रकाश था, यूहन्ना का प्रकाश था, है ना, ठीक है, परमेश्वर ने यूहन्ना को लिखा है, लेकिन यूहन्ना को इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है अभी हम थोड़ा सा इसी के बाद आगे देखेंगे। दूसरा खंड जो है प्रस्तावना, दूसरा पहला दर्शन, पहला दर्शन मसीह की कलीसिया का है। अब कलीसिया युग में, उस समय कलीसिया स्थापित हो चुकी थी, जो जब था प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाने के बाद 30वीं शताब्दी में, तीसवीं 33वीं शताब्दी थी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए और उसके बाद स्वर्ग उठा लिए गए, और उसके बाद फिर देखते हैं यरूशलेम में कलीसिया की स्थापना हुई और कलीसिया अब जगह जगह बढ़ती चली आ रही है। तब उसके बाद जो दर्शन है उन मसीह और कलीसिया, 7 कलीसियाओं को परमेश्वर का नाम लेकर के उन कलीसियाओं के बारे में वर्णन करता है, जैसे 11 पद में लिखा हुआ है वो कलीसिया इफिसो सुमना परगाम थियातुरा सर्दिस फिलदेपिया और लौदिकिया, इसको हम बाद में हम देखेंगे और इसके क्रम में भी हम अध्ययन करेंगे इसका। तो यह है दूसरा दर्शन, तीसरा भाग। दूसरा दर्शन जो है वो है मसीह एवं स्वर्ग, और स्वर्ग का दर्शन उसमें बहुत सारी चीज़ें। स्वर्ग को किस प्रकार से आसानी से स्वर्ग में नहीं पहुंचाया गया, परमेश्वर ने मुझे और आपको आसानी से स्वर्ग नहीं पहुंचाया, क्योंकि न केवल प्रभु ने इस पृथ्वी पर अपने आप को बलिदान किया, लेकिन उसके बाद भी उसको एक बहुत बड़े युद्ध में से होकर जाना पड़ा यीशु मसीह को, और उन सारे स्वर्गदूतों से जो उसके विरोध में थे, और उस पर विजय पा करके परमेश्वर ने स्वर्ग के राज को या स्थान को मेरे और आपके जिसका तैयार किया था मुझे और आपको पर वहाँ पर पहुँचने में मदद करी। तब उसके बाद चौथा जो दर्शन है वो मसीह एवं विजय, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह विजय पाए। तो मसीह स्वयं 4:1-16 मसीह एवं विजय 17:1-21 तब उसके बाद दर्शन मसीह एवं स्वर्ग का कलीसियाओं का सारा दर्शन है। तब अंतिम में न कल चुनौती है लेकिन कार्य का पूर्ण होना, कल चुनौती है और कार्य का पूर्ण होना। और तब 20-21 बहुत सुंदर अध्याय हैं, हम उसी चीज़ को पाते हैं जैसे मैंने पहले कहा था, जो हमने अदन की वाटिका में पहले और दूसरे अध्याय में देखा, जो परमेश्वर ने उस वाटिका को रचा था, मनुष्य को रचा था, मनुष्य निष्पाप था। अब 21-22 में मनुष्य निष्पाप उस नए वाटिका में है जो उसकी कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है, ये है। लेकिन इसके साथ साथ जब और हम आगे बढ़ते हैं और विभाजन में जाते हैं, तो हम एक चीज़ को और देखना चाहेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने इसको अलग अलग करके बांटा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, हमने दानियल उसके 12:9 को देख लिया। अब आइए पहले से तीन पद तक मैं पढ़ना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ मैं शेयर करना चाहता लेकिन टाइम के अनुसार मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ रहा है। यीशु मसीह का प्रकाशन, किसका प्रकाशन है? यीशु मसीह का प्रकाशन, जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया, परमेश्वर पिता ने ये प्रकाशन अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, परमेश्वर पिता ने ये प्रकाशन अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्या कहा है? परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली हैं। उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया। परमेश्वर पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने वो बात स्वर्गदूत तक पहुंचाई, स्वर्गदूत ने उस बात को यूहन्ना तक पहुंचाया, और यूहन्ना ने उस बात को मुझे और आप तक पहुंचाया। ये क्रम है। तो प्रकाशवा की पुस्तक, परमेश्वर पिता अपने पुत्र को वो बातों पहुंचा रहा है, पुत्र स्वर्गदूत को पहुंचा रहा है, स्वर्गदूत यूहन्ना को पहुंचा रहा है, यूहन्ना मुझको और आप तक पहुंचा रहा है। दूसरा पद, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, यूहन्ना वो व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह की सबसे अधिक गवाही के बारे में हम पाते हैं, अर्थात उन सारी बातों को जिन बातों को उसने देखा है, उन सारी बातों को। तब तीसरा पद, धन्य है वो जो इस नबूवत की वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वो जो इस सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों को का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। सो प्रकाश वाक्य में बहुत बार 7 का वर्णन है, 12 का वर्णन है, 12 नंबर का वर्णन, और ये सारे नंबर कुछ ना कुछ दिखाते हैं। तो हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन तो पहला पद हमने समझ लिया। दूसरा पद, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी। प्रभु यीशु मसीह वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन हमारे साथ था। वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया, वचन के साथ सब कुछ हुआ, और ये वचन देदारी हुआ। वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह देदारी हुआ। और इसलिए जब यीशु की बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। और इस कहता है यीशु मसीह गवाही दी, अर्थात उस सारी बातों को। लेकिन तीसरे पद में जो धन्य है, धन्यवाणी, ये ब्लेसिंग्स हैं। और प्रकाशवाक्य में 7 ब्लेसिंग्स जो हैं वो विश्वासियों के लिए है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके विश्वास किया। प्रचार बहुत लोगों के सामने किया जाता है, इब्रानियों 4:2 का दूसरा पद, क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश सुसमाचार सुनाया गया, बहुतों के समान मुझे और आपको भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया गया। लेकिन क्या आगे क्या कहता है? परंतु उस सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? वचन सुनाया गया। हो सकता है आप कलीसिया में कई दिनों समय से आ रहे हो, आज यहाँ हैं, कल कहीं और हों परसों। हो सकता है आप मसीह परिवार में आपका जन्म हुआ हो, हो सकता है आपके पिताजी या दादाजी पास्टर रहे होंगे, पादरी रहे होंगे, बिशप रहे होंगे, कुछ और होगा। मैं भी इस बात को लेके बहुत घमंड करता था, कुछ भी हो। और उन्होंने, अरे हम तो शुरू से वचन सुन रहे हैं, शुरू से सुसमाचार सुन, बहुत अधिक सुना। और कितने लोग हैं परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते चले आ रहे हैं? आप सब अपने बारे में, आप कब से प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, सुसमाचार को सुन रहे हैं? एक दिन, एक महीना, एक साल, कई और साल, कई और समय? लेकिन क्या कह रहा है परमेश्वर? उनको सुनाया गया है, कह रहा है वचन उन्हें कुछ लाभ नहीं है। कुछ क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर के वचन को तो सुना है, और इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे जीवन में आप विश्वास को उत्पन्न करिए, ताकि मैं उस वचन पर विश्वास करके आपके वचन को मैं ग्रहण कर सकूं। और वचन को ग्रहण करने का मतलब क्या है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, अर्थात वचन को, उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। कलीसिया में जाना है, कलीसिया में नाम लिखवाना काफी बात नहीं है, मैं भी बहुत घमंड करता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्या मैंने उस सुसमाचार को सुन करके, उस पर विश्वास करके उसे ग्रहण किया है? क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? मैं इसलिए जा रहा हूं, अरे मुझे बहुत अच्छा लगता। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप कब से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन, लेकिन आपका प्रतिउत्तर क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है? जब आप ये सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, क्या आपके अंदर ये आत्मा ये उस पाप को कायल करता है कि मैं भी पापी हूँ और मुझे परमेश्वर पश्चाताप करना चाहिए? और तब आप प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे एक नया जीवन प्रदान कीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हम सुनते चले जाएं और जीवन खत्म हो जाए और हम कुछ ना कर पाए। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और जो अवसर हमें मिले, जो अवसर मिले, मैं बार बार अपने साक्ष्य में बोलता हूँ, पहले बहुत घमंड करता था, लेकिन जब एक व्यक्ति ने, एक भाई ने, एक प्रभु के दास ने, आज प्रभु की सेवा करते करते उनको लगभग मेरे से 2-4 साल का फर्क था, उस समय कृष्ण कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने मेरे से 3 प्रश्न पूछे थे, भाई रॉली अगर आज आप मर जाएं आप कहाँ जाएंगे, आपको क्या निश्चय है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मेरे प्रियो, सुन तो बहुत समय से रहते, हम मुझे बहुत गमन था, मैं यूथ ग्रुप का मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं था और उसी में बहुत गमन करता था। लेकिन मेरे प्रियो, उस दिन प्रभु ने मुझे दिखाया। मेरी एक नम्र अनुरोध है, निवेदन आपसे, परमेश्वर के सुसमाचार को सुन करके पैरों से मत रौंदिए, उसका प्रत्युत्तर आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं देंगे तो परमेश्वर आपके साथ कुछ और व्यवहार करें। सावधान हो जाइए, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया था, और ये गंभीर बात है। और इसलिए सुसमाचार तो सुनाया गया, लेकिन उन्होंने, वो कहता है कि विश्वास नहीं किया। सो कह रहा है कि सारी बातें जिन्होंने देखी, यूहन्ना इस बात की गवाही दे रहा। अब यहाँ पर 3rd पद में, धन्य हैं वे जो उस, पहला धन्यवाणी, 7 धन्यवाणी को हम देखेंगे जल्दी से, धन्य है वो जो इस नबुवत की वचनों को पढ़ता है। जैसे अगर मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूँ तो प्रभु वो धन्यवाणी प्रचारक के लिए हो गए, या आप जब घर में पढ़ते हैं तो आप किसी सामने आप पढ़ के सुनाते हैं तो आप उस समय के लिए ये लागू होता है। दूसरी बात, धन्य है वो जो सुनते हैं, आप सुन रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप धन्य। तीसरी बात, जो लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, जो लिखी हुई बातों का पालन करते हैं। केवल सुनाना काफी नहीं है, केवल सुनना काफी नहीं है, लेकिन पालन करना अनिवार्य है। क्यों? आगे चल के क्या लिखा है इस पद के अंत में, क्योंकि समय निकट है। जब प्रभु आ जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद असर नहीं होगा। मुझे और आपको नहीं मालूम कब तक मुझे और आपको रहना है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाहर निकलूं, ठोकर खाऊं, गिर जाऊं और मेरा हार्ट अटैक हो जाए, मैं चला जाऊं इस दुनिया से, किसी को नहीं मालूम। तो मृत्यु से डर नहीं है, मैं प्रभु का धन्यवाद हूं क्योंकि मेरे पास एक आशा है। रास्ते में बस दुर्घटना हो सकती, कुछ भी हो सकता है, अब मौत से हमें डर नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने एक हमें धन्य आशा दे दी। लेकिन अगर सचमुच में हमने सुनकर उसको पालन करने के तत्पर नहीं है, हो सकता है कि हम 100% ना हो पाए, लेकिन हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर समय समर्पण होना चाहिए, हमारे अंदर ये अनुशासन होना चाहिए, परमेश्वर हम आपके वचन का पालन करना चाहते हैं, हम आपके वचन का पालन, और हम अपने बल पे नहीं कर सकते, लेकिन हमें आपकी सहायता की जरूरत है, आपकी सहायता द्वारा हमें पालन करना सिखाइए, हमारी मदद करिए। तो पहले धन्यवाणी, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जो धन्य है जो सुनते हैं और लिखी बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। अर्थात अगर समय निकट है तो मुझे और आपको सावधान होना। अगर मान लीजिए आप कुछ बीमार हैं, या मैं अपने ही बारे में, आपके बारे में नहीं, मैं अपने ही बारे में, मैं मेरे को तकलीफ है, मैं जाता हूँ डॉक्टर पास और डॉक्टर को दिखाता हूँ मेरे को ही तकलीफ हो रही है। डॉक्टर, अरे आप तो केवल दो ही दिन जिंदा रहेंगे और दो दिन बाद तो आपको चले जाना है, तब क्या प्रतिक्रिया होगी मेरे जीवन में, मेरे दिल में क्या प्रतिक्रिया होगी, या आप मेरी जगह अपने आप को रख ले, क्या प्रतिक्रिया होगी? सोच लीजिए, समय निकट है। एक एक शब्द परमेश्वर के वचन का हमें प्रोत्साहित भी करता है तो हमें चुनौती भी देता है, हमें प्रोत्साहित भी करता है तो हमें चुनौती भी देता है। तब दूसरी बात, दूसरी धन्यवाणी, 14 अध्याय 7 धन्यवाणी को जल्दी से देखेंगे। 14 अध्याय उसका 13 पद, फिर मैंने स्वर में एक शब्द ये कहते हुए सुना, लिख, धन्य है वे मृतक जो आपसे प्रभु में मरते हैं। धन्य है वे मृतक जो आपसे प्रभु में मरते हैं। कितनी अद्भुत बात है, एक विश्वासी जिसकी आशा प्रभु के साथ है, एक विश्वासी जिसकी आशा प्रभु के साथ है, वो परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन में धन्य माना गया है। मेरे प्रियो, कई बार अपने प्रियो को खो देते हैं, हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है, जरूर, लेकिन अगर वो हमारे प्रिय प्रभु को जानते हैं तो पीड़ा तो रहेगी। अभी पिछले दिनों में हमारे भाई कामले यहाँ संसार से चले गए। अब भाई कामले को बहुत लोग जानते थे, हमारी कलीसिया के एल्डर थे, कोविड में अचानक से कुछ दिन के अंदर अंदर उनको संसार से जाना पड़ा। जब वो उनकी वाइफ और बच्चे यहाँ से जाने वाले थे तो कहने लगे, अंकल हम आपके साथ कुछ देर बैठना चाहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, बैठे हमारे से बात कर रहे थे, जाने की तैयारी थी उनकी, उन्होंने सारी बातें शेयर करी अपना, और क्योंकि गुजरात से थे, गुजरात में उनका घर है, भाई लोग हैं, परिवार है, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है क्या, ज़रूर उनको दुख था, उनके आंसू थे, लेकिन बार बार वो एक बात कह रहे थे, बार बार कह रहे कि हमें ये मालूम है हम उनसे मिलेंगे, हमें मालूम है हम उनसे मिलेंगे, हमें मालूम है हम उनसे मिलेंगे। उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया। पीड़ा एक अलग बात है, लेकिन एश्योरेंस अलग बात है, और उस एश्योरेंस ने उनको कितना अधिक मजबूत करके रखा। दो बच्चे थे, दोनों बच्चे छोटे बच्चे थे, लेकिन दोनों बच्चों के अंदर ही परमेश्वर पिता ने अपने पिताजी के लिए एश्योरेंस दिया था। मेरे प्रियो, यहाँ का कह रहा है, धन्य हैं वे जो प्रभु में मरते हैं। जब आप अन्य जातियों को देखते हैं और जब उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो कितना अधिक जमीन पर लेटेंगे, यहाँ करेंगे करेंगे, हाय तौबा करेंगे, छाती पीटेंगे, तो सर के बाल नोचेंगे, तो ये करेंगे करेंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई धन्य आशा नहीं है। पीड़ा केवल इसी तरह नहीं, मैंने कहा कोई भी प्रियजन होते हैं, हम दुख होता है। कोविड में मैंने शेयर भी करा, अचानक से दो दिन के अंदर अंदर मेरे कज़न, पहले उनकी डेथ हुई, उसके बाद उनकी वाइफ की डेथ हुई, दो दिन के अंदर अंदर, जबकि 10 दिन पहले वो चर्च में बैठे हुए थे, यहाँ पर हमसे बातचीत कर रहे थे। संसार है कई बार। मेरे प्रियो, प्रश्न ये है, आपके जीवन की आशा क्या है? तीसरा, 16 अध्याय उसका 15 पद, देखो मैं चोर के समान होता हूँ, धन्य है वो जो जागृत रहकर अपने वस्त्रों की रक्षा करता है। जो जागृत रहकर अपने वस्त्रों की रक्षा करता है, जागृत होकर मतलब हम सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं, तैयार रहते हैं। वस्त्र हमारे, जो प्रभु ने अपनी धार्मिकता के वस्त्रों को हमें, वस्त्रों से हमें सुशोभित किया है। 16 अध्याय 15 पद, जो अपने वस्त्रों से हमें सुशोभित किया है, धार्मिकता के वस्त्र, वो किसी प्रकार से अशुद्ध ना होने पाए। कह रहा है धन्य है वो जो जागृत रहकर, सचेत रहकर। जागृत रहना मतलब ये, हम कई बार अगर चौकीदार गेट पे बैठा है, अगर वो जागृत तो है, जगह तो है, लेकिन अगर सचेत ना हो तो चोर कहीं ना कहीं से चल जाएगा, साधन नहीं है। तो किस रीति से हमें कितना अधिक सचेत होना चाहिए कि हमारे वस्त्र जो परमेश्वर ने धार्मिकता के वस्त्र में पहनाए हैं, हमारे सोच के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी भाषाओं के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा किसी प्रकार से अशुद्ध ना होने पाए। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, मैं जिन स्थान में उठ रहा, बैठ रहा हूँ, जा रहा हूँ, जिन जीवन को मैं व्यतीत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मेरा जीवन किसी प्रकार से वस्त्रों को अशुद्ध तो नहीं कर रहा? तीसरी, धन्य है वे। तो यदि ऐसा है, मैं सचेत, मैं और आप सचेत हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप धन्य बने। वो धन्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने की है वो वहाँ अलग है। ये धन्यवाणी बिल्कुल हम प्रभु यीशु मसीह के उस राज की निकटता में है, बिल्कुल अंत में पहुंच रहे हैं। 14:19 और उसका 9 धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में आमंत्रित हैं। कितनी सुंदर बात है, किस किस को मिला है निमंत्रण, प्रभु ने आपको वहां निमंत्रण दिया है भाई। हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं सहज और नर्म हूं। उसने आपको निमंत्रण दिया है, क्रूस पे जब उसने हाथ फैलाया हुआ था, उन हाथों में कील ठोकी जा रही थी, उन पाँव में ठीक के कीले ठोकी जा रही थी, वही समय था वो आपको बुला रहा था, मैंने तुम्हारे लिए पीड़ा को सहा है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लिया है, मैंने कसा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और ना केवल तुम विश्राम पाओगे लेकिन अनंत विश्राम में मैं तुम्हें प्रवेश कराऊंगा। उसने मुझे और आपको निमंत्रण, लेकिन यहाँ पर लिखा है धन्य है वे जो मेमने के भी, एक समय आएगा परमेश्वर क्या करेगा, ये कलीसिया उसकी देह है, उसकी दुल्हन है, इस दुल्हन को इस कलीसिया को ले जाएगा, इस कलीसिया को ले जाएगा, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं। और अगर कलीसिया को ले आने वाले हैं, और अगर आप नहीं, आपको निमंत्रण नहीं मिला है, तो आप वहां जी नहीं पाए, या आपको निमंत्रण मिला आपने उसको तिरस्कार दिया, फेंक दिया, उसकी कोई चीज, प्रभु के निमंत्रण को गंभीरता से लेना। मेरे प्रियो, मैं बार बार रिमाइंड करना चाहता हूँ, बार बार आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, कहता है विवाह के भोज में कितना सुंदर समय होगा, जहां स्वयं परमेश्वर होगा, उसका पुत्र होगा, और परमेश्वर पिता अपने पुत्र के विवाह को, ग्रंथ में पौलुस कहता है कि उसने हमारी मंगनी लगाई है, हमारी बात एक से लगाई है, अर्थात अपनी कली से, उसकी कली से उसकी दुल्हन है जिसको लेने आएगा, किस तरह से तैयारी होती है। इसीलिए मत्ती उसके 25 में वो 10 कुंवारी की कहानी दी गई है, शिक्षा दी गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आगे चल करके 20 उसका 6 धन्य धन्य और पवित्र हैं वो जो प्रथम पुरुत्थान के भागी हैं। कितना सुंदर होगा प्रथम पुरुत्थान, क्या मतलब है, एक के द्वारा मृत्यु आई, दूसरे के द्वारा जीवन आया, और प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को जी उठाएगा, तिसलुनीके में बहुत अधिक वर्णन है, लेकिन कितना अधिक है, पवित्र हैं वो जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। किस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मृत्यु से पार किया है, मृत्यु पर हमारे पर कोई अधिकार नहीं है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, पौलुस कहता है 1 के 15 अध्याय में, उसके 56-58 पद में पढ़ेंगे तो आपको यही मालूम चलेगा कि जय ने मृत्यु को निकल लिया, प्रभु यीशु मसीह हमारा विजयी है, उसने मृत्यु को निकल लिया। अगर वो जी ना उठा होता तो मेरे और आपके पास कोई आशा ना होती, प्रभु यीशु मसीह सब काम करते, शिक्षा देते, ये करते वो करते, सबको करते, लेकिन उसके बाद स्वयं कब्र में जाने के बाद कहानी खत्म हो, लोगों ने तो यही सोचा था, शिष्यों ने तो यही सोचा था, इसीलिए शिष्य छोड़ के चले गए, क्यों शिष्यों ने अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्यों उसके सेवक बन गए, क्यों उनके पीछे चले, अपने प्राणों को भी उन्होंने प्रिय ना जाना, क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जी उठे देखा, और वो जो जी उठा है उसने मुझे और आपको एक पुनरुत्थान की आशा दी है। आपको मालूम जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को, जिसमें 4 से बदबू आ रही थी और प्रभु यीशु मसीह कब्र पे थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुँच, और तब उसने कहा लाजर तो निकल गया, लाजर बाद में मरा लेकिन वो भी उस दिन के लिए तैयार है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मुझे और आपको अपनी कलीसिया को अपने लोगों को जिलाएंगे, हम भी उसके साथ, वो भी हमारे साथ होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद भी जी उठे, और इसलिए वो कहता है धन्य है वे जो प्रथम, जो पवित्र हैं और प्रथम पुरुत्थान के वारिस हैं। 22:7 धन्य है वो जो इस पुस्तक की नबूवत के वचन को मानता है, धन्य है वो जो इस पुस्तक के वचन के नबूवत को मानता है। और अंतिम बात यह है इसी 22:14 तो 7 धन्य ब्लेसिंग्स हैं जो एक विश्वासी के लिए, एक प्रभु के जन के लिए हैं। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हों, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हों। एक समय था अदन की वाटिका में से परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और तब परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष में से खा करके मेरे समान हो जाए, और उसको निकाल करके वृक्ष पर दिया, लेकिन वो वृक्ष सुरक्षित रखा हुआ है। वो दिन आएगा जब मैं और आप उस अदन में दोबारा, उस नए अदन में प्रवेश करेंगे, और परमेश्वर उसी वृक्ष में जिसको उसने अपने स्वर्गदूतों द्वारा सुरक्षित रखा है मुझे और आपको देगा खाने के लिए देगा। कितने आनंद की बात होगी। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य धन्यवाणी से भरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य केवल डरावनी पुस्तक नहीं है, भय देने वाली पुस्तक नहीं है, लेकिन एक आशा से भरी हुई पुस्तक, आशा से भरी पुस्तक है। तो ये सात धन्यवाणी थोड़ी देर के लिए विचार करिए, हम कहाँ पर अपने आप को रख सकते हैं। मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगा लेकिन बिना पूरा हुआ उसका एकमात्र वचन एक बिंदु भी ना टलेगा। परमेश्वर के वचन परमेश्वर के वचन है, किसी मनुष्य के नहीं है। और परमेश्वर वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता। और इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना, डरना नहीं है, लेकिन उसकी सकारात्मक तो देखिए, हाँ जरूर न्याय से मुझे और आपको डरना है, उस आग से हमको डरना है जिसके हम प्रकाश वाक्य के अंतिम अध्याय में वर्णन पाते हैं, उसको हम देखेंगे, उससे डरना है। लेकिन उस आशीषों पर विचार कीजिए, परमेश्वर ने मुझे और आपको उन आशाओं में सहभागी होने के लिए उस क्रूस पर अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करा है, ताकि न केवल मैं और आप पाप से छुटकारा पाए, लेकिन उस पाप से छुटकारा पाने के बाद उस अनंत आशीषों में सहभागी हो सकें जो मेरे प्रियो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। कितना सुंदर वो स्थान होगा जहां ना कोई तो दुख होगा, ना कोई पीड़ा होगी, ना कोई अहंकार होगा, ना वह सूरज की जरूरत है, ना ऊंचाई चांद की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रभु स्वयं वहां वास करेंगे। वहां नौकरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम क्यों नहीं आए टाइम से भाई। लेकिन वो समय वो होगा जो रात दिन हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। बहुत ही सुंदर। मेरे प्रिय, संसार में हम कितने दिन के हैं? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, उससे ज्यादा नहीं। आयु घटा दी गई है, घटती आ रही है। लेकिन उस अनंत के बारे में विचार कीजिए, उस अनंत के बारे में कि 100 सवा साल इस पृथ्वी पर रह के उस निर्णय को अपने जीवन में ले लें जो अनंत के साथ हमारे जुड़ जाए। अगर प्रभु का तिरस्कार करेंगे तो अनंत काल के दंड में आप रहेंगे, अगर प्रभु को स्वीकार करेंगे तो अनंत काल की उसकी उपस्थिति में विश्राम पाएंगे और आनंद के साथ रहेंगे। निर्णय आपके ऊपर है, चुनाव आपका है। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है। कितने समय सुनते हैं, लेकिन उन्होंने उस वचन को सुन करके विश्वास नहीं किया और उसे ग्रहण नहीं किया। और मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि आप सुनने के बाद भी बिना ग्रहण उसके जीवन व्यतीत करें और कल आपके पास कोई अवसर ना हो, प्रभु दया करें। सो प्रकाश वाक्य की पुस्तक मेरे और आपके लिए परमेश्वर का एक बहुत ही सुंदर प्रकाशन है, परमेश्वर का प्रकाशन है, वो प्रकाशन जो उसने अपने पुत्र को दिया है, पुत्र ने स्वर्गदूतों को दिया है, स्वर्गदूतों ने यूहन्ना को दिया है, यूहन्ना ने मुझ तक पहुंचाया है, आपका मुझ तक और आप तक पहुंचा और उसको लिख सका है। सो परमेश्वर मेरी आपकी सहायता करें। ये प्रकाश वाक्य पुस्तक एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। मैं जब सोचता हूँ, विचारता हूँ, कई बार हम बाइबल को डर के मारे नहीं पढ़ते, कई बार हमें समझ में नहीं आता, पूछता है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु सहायता मांगिए, किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ, बहन बहनों के साथ, भाई भाइयों के साथ सहायता मांगिए, मदद कीजिए और परमेश्वर के अवसर को बहुमूल्य जानिए, उसके वचन का तिरस्कार ना करें। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो प्रकाश वाक्य जो खोल रही हैं चीज़ें, मैंने कहा प्रकाश वाक्य अर्थ ये है जो ढकी हुई चीज़ें वो खुल रही हैं, खुलती चली आ रही हैं, खुलती चली। आज हमने 6 आशीषों को देखा, 7 आशीषों को संक्षिप्त में, किस प्रकार से परमेश्वर का वचन उनको खोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा खोल रहा है। और भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर को, परमेश्वर के पुत्र को, कई सारी चीज़ों को देखते चले जाएंगे और तब उन सारी बातों को देखेंगे जो परमेश्वर तैयार कर रहा है। तब आप दानियेल की पुस्तक में और इसमें पुस्तक में फर्क पाने पाएंगे। परमेश्वर में सहायता करें। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, केवल ये मत सोच के जाइए अरे आज पुस्तक अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, अच्छी नहीं, लेकिन आपका निर्णय क्या है, आपके सोच क्या है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं। आइए